वार्निंग, ठीक 3 घंटे बाद अरमान को होश आ गया। होश में आने के बाद अरमान अचानक ही उठकर बैठ गया। टाइगर उस वक्त उसके साथ मौजूद था, उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। अब आगे, होश में आने के बाद अरमान की आंखों के सामने एक बार फिर वही सीन घूमने लगा जब आस्था का उसे चांटा मारा था और उसकी गोद में एक बच्चे देकर ये कहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे संभालो। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। एक बार फिर उसका सर पूरी तरह से भारी होने लगा। तभी टाइगर कोल्ड वॉइस में बोला, किंग शांत हो जाइए, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर ने भी आपको रेस्ट के लिए बोला है। अब जैसे ही टाइगर ने थोड़ा शर्माकर परवाह जताई, अरमान ने केवल उसे भावहीन लुक दिया और फिर थोड़ा तेज आवाज में भड़क कर बोला, डॉक्टर आखिरकार मुझे हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि खोई हुई यादें भी वापस लाई जा सकती हैं, तो फिर मेरी मामूली से एक्सीडेंट में गई हुई यादें क्यों नहीं लौट रहीं? बोलो, जवाब दो मुझे। अब जैसे ही अरमान ने डॉक्टर की ओर देखकर सवाल किया, तो अगले ही पल डॉक्टर की टांगें कांपने लगीं। उसे समझ नहीं आया कि वो अरमान को भला क्या जवाब दे। अरमान के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सच बोल सके। भले ही कभी कभी अरमान एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करता था, लेकिन एक बार फिर डेविल रूप में आने पर वो बेहद खतरनाक हो चुका था, खासकर तब जब उसके मेंशन में उसे लड़कियां नजर आने लगी थीं। आस्था और अंश को देखकर उसका दिल कुछ अजीब सा हो गया था। हैरानी की बात ये थी कि उसे आस्था और अंश दोनों पर ही गुस्सा नहीं आ रहा था, आस्था पर तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि उसी लड़की ने उसे चांटा मारा था। ये बात अरमान को पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही थी। अब डॉक्टर को डरते देखकर तुरंत ही ध्रुव वहां आ गया। बाकी सब ने मिलकर फैसला किया था कि अरमान को इस तरह से समझाना किसी और के बस की बात नहीं है, सिवाय ध्रुव के। ध्रुव आगे आते हुए शांत आवाज में बोला, अरमान भाई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सुनकर अगले ही पल अरमान झुंझलाकर ध्रुव की ओर देखने लगा और इरिटेट आवाज में उससे पूछने लगा, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है ध्रुव, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। अगर मेरी यादें किसी एक्सीडेंट की वजह से गई हैं, तो उसे अब तक वापस आ भी जाना चाहिए था। आखिरकार मेरी यादें क्यों नहीं लौट रहीं? फिर अगले ही सेकंड अरमान ने टाइगर को तीखी नज़रों से देखा और रूडली अंदाज में बोला, टाइगर एक काम करो, एक बड़ा सा डंडा लेकर आओ और उसे मेरे सर पर दे मारो, शायद इससे मेरी यादें लौट आएं। अरमान की बात सुनते ही टाइगर घबरा गया। वो सोचने लगा कि कहीं किंग यानी अरमान अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए सचमुच उससे अपने सिर पर डंडों की बरसात न करवा दे। वैसे भी टाइगर तो अरमान का गुलाम था, जैसा अरमान कहता वो वैसे ही करता। लेकिन ध्रुव ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उसे रोका और जल्दी से बोला, नहीं नहीं अरमान भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपका दिमाग है, कोई खिलौना नहीं। ऐसे डंडा मारने से यादें वापस नहीं आती हैं, वो एक्चुअली में दरअसल आपकी यादें जानबूझकर किसी ने मिटाई हैं। ये सुनते ही अरमान हैरानी से ठिठक गया। फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत ही डॉक्टर और बाकी टीम को बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में केवल अरमान, टाइगर और ध्रुव ही बचे हुए थे। अरमान ने ध्रुव की ओर घूरकर देखा और सीरियस आवाज में सीधे पूछा, ध्रुव साफ साफ बताओ, इस तरह बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? ध्रुव ये गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और प्रोफेशनल अंदाज में अरमान के दिमाग की स्कैनिंग रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बोर्ड पर लगा दिए। उसने प्रोजेक्टर ऑन करके साफ दिखाया और एक एक शब्द पर जोर देते उसे समझाया, अरमान भाई, ये आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर एक ऐसा वायरस दिया गया है जिसने आपकी खास यादों को मिटा दिया है, खासकर आपकी पिछले 2 साल की यादें गायब कर दी गई हैं। इन 2 सालों में आपने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया और उनका खात्मा कर दिया था और आपका दिल हल्का फुल्का हो गया था। इतना ही नहीं, आपने नानी माँ और उनकी बेटियों को अपने घर में पनाह दी थी और आपके दिल में उनके लिए खास लगाव भी हो गया था। इतना कहकर ध्रुव एक पल के लिए रुका और आगे की बात हिचकिचाते हुए बोला, खासकर नानी माँ की 4थी बेटी से। ध्रुव का इशारा सीधा आस्था की ओर था। इतना सुनते ही अगले ही पल अरमान ने तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लिया, फिर कठोर आवाज में ध्रुव से पूछा, वही जिसने मुझ पर हाथ उठाया था? ये सुनकर ध्रुव के सान खड़े हो गए। वो समझ गया कि अगर उसने जरा भी सच खोला तो अरमान का गुस्सा सब पर भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने तुरंत बात घुमाई, अरमान भाई, आपको जिसने भी ये वायरस दिया है उसके बारे में अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा और एक बार इसका एंटीडोट बन गया तो आपकी सारी यादें लौट आएंगी, लेकिन तब तक आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। फिर ध्रुव ने गंभीर स्वर में उसे समझाया, फिलहाल आप किसी पर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ हम घर वालों पर, मैं, टाइगर, मारिया और नानी माँ और उनकी बेटियां, इन पर ही भरोसा कीजिए, बाकी कोई भी आपके खिलाफ हो सकता है। जैसे ही ध्रुव ने नानी माँ और उनकी 4ों बेटियों का जिक्र किया, अरमान पूरी तरह से हैरान और हक्का बक्का रह गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, आखिरकार मेरी 2 साल की यादें किसने मिटाई होंगी? क्या सच में ऐसा भी कोई वायरस होता है जो इंसान की जिंदगी के गिने चुने पल ही छीन ले? लेकिन अरमान ने कोई सवाल नहीं किया, वो चुप रहा और उसकी खामोशी में तूफान छिपा था। ध्रुव ने थोड़ी देर चुप रहकर अरमान की आंखों में सीधा देखा और उसे साफ साफ बताया,
अरमान भाई, ये कोई आम वायरस नहीं है। इसका नाम है साइकोवाइप। ये दिमाग की उन कोशिकाओं को टारगेट करता है जो इंसान की यादों और इमोशंस को जोड़कर रखती हैं। इसे जरूर किसी सिरफिरे जीनियस ने बनाया है और वही आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, ध्रुव ने अंदाजा लगाते हुए शांत स्वर में कहा। ध्रुव की बातें सुनते ही अरमान की आंखें सिकुड़ गई और उनमें गुस्सा चमका। उसने अपनी बेचैनी छिपाते हुए ध्रुव से सख्त आवाज में पूछा, तू इतना बड़ा डॉक्टर है, क्या तू इसका एंटीडोट नहीं बना सकता? आखिरकार तुझे एंटीडोट बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बिना यादों के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पूरी तरह से खाली हो गया है। मुझे मेरी यादें पूरी तरह से वापस चाहिए। ध्रुव, चाहे कुछ भी करो और इसके बारे में मुझे साफ साफ बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वायरस मुझे कब इंजेक्ट किया गया था। मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं? मुझे सिर्फ 2 साल पहले की लड़कियों की तस्करी वाली लड़ाई ही याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी ध्रुव थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंस से बोला, भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिसने भी आपके साथ ये घटिया चाल चली है हम उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तब तक आपको इसके लिए थोड़ी हिम्मत और पेशेंस से काम लेना होगा। ध्रुव के ये मुंह से शब्द सुनते ही अरमान एक पल के लिए दंग रह गया और उलझन भरी आवाज में झुंझलाकर बोला, पेशेंस से काम लेना होगा? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो ध्रुव, खुलकर कहो। अरमान की आवाज में इरिटेशन को भांपते हुए ध्रुव ने अगले ही पल गहरी सांस ली और झिझकते हुए धीमी आवाज में उसे समझाया, इस वायरस की खासियत ये है कि ये यादें मिटाता नहीं बल्कि उन्हें लॉक कर देता है, ताकि सही कोड या एंटीडोट मिलने पर यादें वापस लौटाई भी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप खुद से अपने दिमाग पर कुछ भी सोचने की कोशिश करेंगे तो उससे आपके दिमाग की नसें पूरी तरह से फट सकती हैं और उसी पल आपकी मौत भी हो सकती है। और भाई, सच बात तो ये है कि ये एंटीडोट मैं अकेला नहीं बना सकता। ये एंटीडोट अगर कोई बना सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वंशिका, नानी माँ की बेटी।
इतना सुनते ही अरमान की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और झुंझलाकर ध्रुव पर फट पड़ा। ये क्या बकवास कर रहे तू वंशिका, वो गरीब ओल्ड लेडी की बेटी, तुम पागल हो गए हो क्या? वो मामूली लड़की इसका एंटीडोट कैसे बना सकती है? तुमने खुद बताया कि ये किसी जीनियस ने बनाया है, तो क्या उसमें इतनी बुद्धि है, इतनी अकल है? वैसे मुझे तो लगता है कि लड़कियों में कोई अकल नहीं होती। ये कहते हुए अरमान की नज़रों में एक पल के लिए ठंडापन आ गया था। अब जैसे ही अरमान ने दांत पीसते हुए ये कहा तो ये सुनते ही कहीं ना कहीं ध्रुव को अंदर ही अंदर थोड़ी हंसी भी आ गई थी। वो सोचने लगा, काश मैं वंशिका की वीडियो बनाकर भाई को दिखा पाता कि वंशिका मुझसे झगड़ा करती रहती है कि वो मुझसे ज़्यादा जीनियस है, फिर देखते आप कैसे रिएक्ट करते। फिलहाल उसने अपनी आंखों में भावनाओं को छुपाते हुए सिर झुकाया और सीरियस एक्सप्रेशन से आगे की बात बताई, भाई हमें वंशिका की ज़रूरत है, वो वाकई में इसका एंटीडोट बना सकती है। और भाई आप गलत समझ रहे हैं, पिछले 2 सालों से वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, इनफैक्ट हम सब भी यहाँ एक साथ परिवार की तरह रह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। और भाई जब आपने खुद उन्हें यहाँ रहने की परमिशन दी है तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर आपने परमिशन दी है तो आपने तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। अरमान को ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो अपने दिमाग पर हाथ रखकर कुछ सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत ही ध्रुव ने उसे टोका, नहीं भाई प्लीज़ आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? अब जैसे ध्रुव ने ये कहा उसके ठीक पीछे उसे आहान, आकाश और सुमित दिखाई दिए। अब तक चारों ही वहां आकर खड़े हो गए। भाई, आहान ने अरमान की ओर देखकर दबी हुई आवाज में उसे पुकारा, फिर आकाश और सुमित उसे समझाते हुए धीरे से बोले, अरमान तुझे हम पर तो भरोसा है ना? हम जानते हैं कि तू अपनी यादें खो चुका है, इसीलिए तू अब लड़कियों पर, औरतों पर, किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन तुझे अपने भाई और दोस्तों पर तो भरोसा है ना? हम तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और वैसे भी वो लड़कियां अब इस घर का हिस्सा बन चुकी हैं, उन्हें इस तरह से निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अपने दोस्त और भाइयों के मुंह से ये शब्द सुनकर अरमान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुका था। अगले ही पल इसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर गुस्से के भाव छुपाते हुए उसने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है वो लोग यहाँ रह सकते हैं, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वो करो, लेकिन उन्हें समझा देना कि वो मेरी आंखों के सामने ना आए। और वो लड़की, हाँ वो लड़की कौन थी जिसने मुझ पर हाथ उठाया? अब जैसे ही अरमान ने सारी बातें करने के बाद ये सवाल पूछा तो वैसे ही सब एक दूसरे का चेहरा अनमने ढंग से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान के इस सवाल का क्या जवाब दें। भले ही उन्होंने वायरस की डिटेल्स और लड़कियों के यहाँ रहने के बारे में अरमान को सब कुछ बता दिया था, लेकिन आस्था से शादी और बच्चे की बात तो वो भूलकर भी उसे नहीं बताने वाले थे, क्योंकि अभी तक अरमान का बिहेवियर और उसकी सोच शादी, रिश्ते और प्यार को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदली थी। और जब तक अरमान के दिल में थोड़ा बहुत भी प्यार का एहसास नहीं जागता तब तक उसे कुछ भी बताना पूरी तरह से बेकार होगा। अगर अरमान को ये सच पता चल गया कि असल में आस्था कौन है और इस परिवार में उसकी क्या पहचान है, तो अरमान किसी की भी परवाह किए बिना उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। फिलहाल तो सब यही सोचकर एक दूसरे को कन्फ्यूजन से देखने लगे, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है, इसके बारे में हम तुम्हें जवाब देंगे बेटा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नानी माँ की मुंह बोली बेटी है, जो अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव गई हुई थी, और उसके बच्चे और उस लड़की की जिम्मेदारी तूने अपने सिर पर ली थी, इसीलिए तो उसने तुझसे कहा था कि अपनी जिम्मेदारी को संभालिए। अब दादाजी की ये बात सुनकर अरमान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अरमान अपने आप से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी कब ली और इस बारे मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अब ये बात वो खुलकर नहीं बोल सकता था, क्योंकि ध्रुव ने उसे पहले ही वायरस के असर के बारे में बता दिया था। अरमान ने ये बात आसानी से एक्सेप्ट भी कर ली थी, क्योंकि वो जिस फील्ड में था वहाँ उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके कितने और किस तरह के दुश्मन हैं। वो अच्छी तरह से जानता था कि लोग उसे किस तरह से नीचा दिखाकर पूरी दुनिया के सामने उसे बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए अरमान ने इस बात को भी गंभीरता से लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और सीधे तरीके से पूछा, दादाजी आप प्लीज ये गोल गोल बातें घुमाना बंद कीजिए, मुझे सब समझ में आ जाएगा, आप साफ साफ बोलिए। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि स्टोरी आगे चलकर बोर हो रही है या मैं स्टोरी को खींच रही हूँ, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी ऑलरेडी 330 चैप्टर पर फिनिश हो चुकी थी, बट आप लोगों के प्यार को देखते हुए, इसके भारी डिमांड को देखते हुए मैंने स्टोरी का सेकेंड सीजन इसी के अंदर स्टार्ट किया। मैंने कोई अलग से नहीं लिखा, तो अब अलग से स्टोरी स्टार्ट करने में थोड़े कैरेक्टर्स भी लाने होंगे और थोड़े चेंज भी करने होंगे, तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को अजीब लगे, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ ठीक नहीं हो सकती ना। अगर सारी चीज़ एकदम से ही ठीक हो जाएंगी तो फिर स्टोरी एंड हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।